मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा और मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा कि बुधवार के डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में मैंने जो आप सब के सामने एक प्रस्ताव रखा था उसे आप सभी ने लगभग लगभग ध्वनि मत से पारित किया है, सर्वसम्मति से पारित किया है और बड़े हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और उत्साह के साथ पारित किया है। इसका मतलब यह मैं निकालता हूं कि जो मेरा प्रस्ताव था कि बुधवार को हम लोग कुछ इस तरह के विषय पर बात करें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अलग से आपके लिए बहुत मदद करने वाला होगा। हम विषय पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ने जो सुझाया है और उसके बारे में मैं पहले कह भी चुका था कि डेफिनेटली अगर बुधवार को कोई करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय हुआ तो हम उसकी तरफ इशारा करेंगे या बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अगर जरूरत हुई तो नेक्स्ट डे उस पर डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मेरे लिए करंट अफेयर्स, आप यूं कह लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की प्राण वायु है, इसलिए वहां तो मैं समझौता कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, किसी को हम जब बहुत डिटेल में जाकर के जानने की कोशिश करते हैं, समय को देखते हुए थोड़ा सा उसको कट कर दिया, थोड़ी सी बातें इशारे में कह दी, थोड़ा सा आपके ऊपर काम डाल दिया तो हमारा बात बन जाएगा। लेकिन जो बुधवार का प्रस्ताव आप सबने स्वीकार किया है उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही सच पूछिए तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप सब इस बात को समझ रहे हैं कि इन सब की कितनी अधिक जरूरत आप सबको है। क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में बस एक बात रहती, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, खूब सारा पढ़ना बस। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नहीं, पढ़ें कैसे, किस तरीके से और इसके जो आयाम हैं उनको भी समझें, यह भी जानने की उत्सुकता आप सब में है। दोस्तों, आज मुझे जो प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम दो विकल्पों तक पहुंचे, इसके बारे में कुछ बातें करनी थी, लेकिन आज मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बेसिकली अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके जो परिणाम आए हैं उनको आधार बना करके आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं और ये बातें कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको परिणाम नहीं बताने जा रहा हूं कहां कहां क्या हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। मैं आपके अंदर एक जो राजनीति विज्ञान की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। आपने क्या इस बात को महसूस किया है कि जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अपना सिलेबस देख रहे थे, मैं मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात कर रहा हूं, और आपको देखना भी चाहिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज आप उसे देखें, तो आपको एक विचित्र बात लगी होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, अदरवाइज नहीं लगी होगी। देखिए, आपके जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है, मैं निबंध को छोड़कर के बात कर रहा हूं, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसमें कितने विषय हैं आप देखिए कि उसमें ज्योग्राफी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों। इसके बाद इतिहास पर प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास दोनों। अब आप सोच करके देखिए, और उसी के तहत बकायदे सोशियोलॉजी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारी सामाजिक समस्याओं पर आधारित होते हैं। यानी कि 3 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, राइट, फर्स्ट पेपर। लेकिन सेकंड पेपर, जब आप सेकंड पेपर पर जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही विषय है, याद रखिए, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये बात अलग है कि जब आप शीर्षक में जाएंगे तो उसमें होगा कि सोशल जस्टिस और फलाना पॉलिटी और नॉट एट ऑल। विषय एक ही है, वो है पॉलिटिकल साइंस, उसकी डिटेलिंग वहां दी हुई है। आपको सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि एक पेपर में तो 3-3 विषय रखे हुए हैं और यहां एक ही विषय को एक पेपर में रखा गया है। थर्ड पेपर के बारे में सोचिए, थर्ड पेपर में कितने विषय रखे गए हैं, साइंस भी है, आपकी सिक्योरिटी भी है, आपकी इकोनॉमिक्स भी है, या इकोनॉमी है कह लीजिए, पर्यावरण भी है, कितने सारे विषय हैं, उसे एक पेपर बना दिया। लेकिन जो आपका जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पर आधारित है। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। सीधी सी बात है कि यूपीएससी मानकर चलती है कि जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं उनकी जो राजनीति है उस पर अच्छी पकड़ हो। देखिए, जब मैं राजनीति की बात कह रहा हूं तो मैं उस जिस अर्थों में आजकल निगेटिव सेंस में कहा जाने लगा है उस अर्थ में बात नहीं कर रहा हूं। एक विषय के रूप में, इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, यहां पॉलिटिकल साइंस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करेंगे तो उसमें बकायदे पॉलिटिकल साइंस आएगा, और जब पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक व्यापक शब्द है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर इसे मानकर चलना चाहिए। दोस्तों सीधी सी बात है कि जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप किस ढांचे में काम करेंगे। देखिए, जो आप होंगे, आपकी जो नियुक्ति होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में होगी, एक प्रशासनिक ढांचे का आप हिस्सा होंगे, लेकिन जो आपको काम करना पड़ेगा वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, राजनीतिक वातावरण में आपको काम करना पड़ेगा। आप कभी ये मत समझिएगा कि आप राजनीति से अलग होकर काम कर सकेंगे। ये बात अलग है कि आप राजनीतिक दल के नेता नहीं होंगे, आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा उस तरह से काम करने के दौर में नहीं होगी, लेकिन जो लीडर हैं, जो सरकार बनाते हैं, सरकार के आदेश के अनुसार आपको काम करना है। यानी कि हम पॉलिटिकल वातावरण, पॉलिटिकल ढांचे में ही काम कर रहे होंगे, तो दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो इसीलिए पूरे के पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, भारत की ही बात नहीं। तो जो सिविल सर्विस के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो पॉलिटी होती है या पॉलिटिकल साइंस होता है उसका बहुत बड़ा चंक दिया जाता है, यानी कि इस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप जो पिछले साल की मार्कशीट है स्टूडेंट्स की उठा करके देखें, उससे पिछले साल की उठा करके देखें, तो जनरल स्टडीज के जो चार पेपर हैं उनमें से जब स्कोर को आप देखेंगे तो पाएंगे कि सेकेंड पेपर में कोई ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाया है, नहीं तो ज्यादातर लोग इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बहुत कम स्कोर कर पाते। कम स्कोर का मतलब ये नहीं कि 80-90 नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए कि दूसरे पेपर्स में 110-120 ला रहे हैं तो पता लगा कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 100 तक आ रही है, 100-105 आ रहे हैं, और ये ट्रेंड देखा गया, यानी कि किसी किसी का ये ट्रेंड ही है। उसका कारण यह है कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी होती है वो दो स्तरों पर होती है, एक किताबी स्तर, आप किताबें पढ़ते हैं, और जो दूसरा इसका स्तर है वो सेंस है, यानी कि आपके अंदर पॉलिटिकल सेंस होना चाहिए। ये पॉलिटिकल सेंस आएगा कैसे? ये पॉलिटिकल सेंस आता है पॉलिटी को देखने से, पॉलिटिक्स को समझने से। जब आप पॉलिटिक्स के अप्लाइड फॉर्म को, यानी कि उसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं, तब आपके अंदर पॉलिटिकल सेंस पैदा होता है। और ये थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो पॉलिटी से ही नाक भौं सिकोड़ते हैं, कहते कि नहीं नहीं इससे हमको एलर्जी है। अगर इससे एलर्जी है तो डेफिनेटली फिर सिविल सर्विस में जाने के बाद आपको, अगर सच में इससे एलर्जी है तो सिविल सर्विस में जाने के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकेंगे। आप किसी भी सर्विस में रहिए, आपके मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर कौन होंगे, राजनेता होंगे। तो ये मान करके चलिए कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिविल सर्वेंट का काम करने का या उसके जीने का, निर्णय लेने का सबसे बड़ा आधार होता है। अब दोस्तों, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, राइट? बकायदे इन 5 राज्यों के चुनाव पर आपको अपनी पॉलिटिकल समझ डेवलप कर लेनी चाहिए कि आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं, क्या कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं राजनीतिक माहौल में। और जब हम राजनीतिक माहौल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में ही आपको देखना है, आपको पब्लिक किस तरीके से सोच रही है उसके बारे में भी देखना है, पॉलिटिक्स का ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है उसे भी देखना है, तब जाकर के आप बदलते हुए पॉलिटिकल माहौल को समझ सकेंगे और अपने आंसर में शामिल कर सकेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल स्टडीज का आपका सेकेंड पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा करेंट बेस्ड होते हैं। अगर हम टोटल मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस ले लें तो कह सकता हूं मैं कि 3-4 क्वेश्चंस तो ठीक है किताब से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर का संबंध करंट बेस्ड होता है। तो इसका मतलब है कि आपको जो माहौल बदल रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, लगातार उस पर अपनी निगाहें रखनी पड़ती हैं, और ये जो निगाहें हैं ये किताबी नहीं है बल्कि उस बदलाव को आप देखेंगे। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, इन 5 राज्यों में हम पाते हैं कि कुछ राज्यों में सरकारें कंटिन्यू कर रही हैं। वेस्ट बंगाल में जो पिछली सरकार थी वही कंटिन्यू कर रही है, असम में जो पिछली सरकार थी वही कंटिन्यू कर रही है, केरल में जो पिछली सरकार थी वही कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो राजनीतिक दल थे, यहाँ के राजनीतिक दलों के जो लीडर्स रहे या इनके जो काम रहे उससे जनता खुश थी, हमको मानना पड़ेगा, चाहे और दूसरे कारण जो भी हों, लेकिन हमें एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में इस बात को स्वीकार करना चाहिए। पुद्दुचेरी में सरकार बदल गई है, यानी कि जो विपक्ष था वो अब सत्ता में आ जाएगा, लेकिन बहुत यूं कह लीजिए कि आसपास के मार्जिन से है, लेकिन स्थिति तो है। और तमिलनाडु में भी ऐसे ही हुआ है, तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है, यानी कि यूं कह लीजिए कि जहां भी जनता थोड़ी सी भी अपने पॉलिटिकल लीडर्स से संतुष्ट है वहां वो फिर से उन्हें मौका दे रही है। एक बहुत विचित्र सी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि वेस्ट बंगाल से आप देखिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। आजादी के बाद सबसे पहले वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने शासन किया कुछ समय तक, इसके बाद बहुत लंबे अरसे तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया। जो पॉलिटिकल पार्टी इतने लंबे समय तक किसी राज्य में शासन कर रही हो, वो विधानसभा के चुनाव में, देखिए एक बार संसद जिसे आप कह लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट न मिले तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट उन्हें न मिले, ये एक नई दृष्टि देता है। यानी कि सच में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतनी बुरी तरह से सफाया किसी राज्य स्तर पर हो सकता है, एक सोचने की बात है, और इसका इस्तेमाल आपको अपने आंसर में करना चाहिए। तो दोस्तों फिर हम ये देखते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके ये लगभग सत्ता बदलती रहती है, केरल में प्रोग्रेसिव पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी फिर से सत्ता में आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो यदि अपने लोगों को संतुष्ट कर पाती है तो वहां के लोग उसे फिर से सत्ता की बागडोर देने में कोई झिझक नहीं दिखाते, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि बड़े खुले मन से और काफी बहुमत पर वो सत्ता उन्हें सौंप देते हैं। ये नहीं कि फिर ठीक है आप दूसरों से समझौता करके किसी तरह से सरकार बनाइए, इस तरह की बातें कम से कम इस बार के राज्यों के चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है। यहां यह भी बहुत साफ तौर पर हो गया, खासकर अगर हम वेस्ट बंगाल के चुनाव के लिए दूसरे राज्यों को भी ले लें, तो कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनमें राज्य के जो मामले हैं, राज्य की जो समस्याएं हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वो राष्ट्रीय समस्याओं पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करते, उन्हें उसकी चिंता नहीं होती, और एक अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर बना है वो बना किस रूप में है, इसी रूप में बना है ना कि जो पूरे राष्ट्र के जो विषय हैं उन्हें केंद्र संभालेगी और जो राज्य के विषय हैं और राज्य के लोगों की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति राज्य की सरकारें करेंगी। तो ऐसे में हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि भैया जो विधानसभा चुनाव है उनमें तो राष्ट्रीय मुद्दे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है, इससे प्रशासन कैसे चलेगा। हमें इन मुद्दों पर सोचना नहीं चाहिए, इस तरह का सोचना एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है उसके विरुद्ध जाकर सोचना होगा। दोस्तों मैंने कुछ तथ्य आपको दिए हैं जिसे आप कह लीजिए कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनाव के निहितार्थ क्या हैं जिनका इस्तेमाल आप आने वाली परीक्षाओं में करेंगे, इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, विजय शेरावत जयपुर से, आशुतोष आचार्य और ललिता गंगवार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।